एक आदमी है, मैं उसके ऊपर जुल्म करूँगा, उसको चेन करूँगा, उसको सज़ा दूँगा, तो ये तो मुझसे बदला लेगा ही लेगा, ये मेरा लॉयल नहीं हो सकता, ये कभी ना कभी मुझे मारेगा जब भी इसको चांस मिल गया। मैं एक बंदे को पैसा दे के ख़रीदूँगा, कभी तो इसका ज़मीर कहेगा कि ये बिक गया, ये कभी उठेगा। सही है, मैं ये दो काम नहीं करना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे इसके माइंडसेट में ऐसा चेंज लाना है कि ये वो करे जो मैं चाहता हूँ, अपनी खुशी से करे। हाँ, फिर ये कंपल्शन फील ना करे, ये ग्रीड, लालच, रिश्वा, ब्राइब फील ना करे, ये फील करे ये मैं खुद कर रहा हूँ। नाउ दैट इज दी इन दियर टर्म राइट पाथ। इसको ऐसा बेवकूफ़ बनाओ कि ये आखिर तक समझता रहे कि मैं खुद कर रहा हूँ, अब ये कभी सर नहीं उठाएगा। क्यों? आखिर वक्त तक ये सेटिस्फाइड है कि जो किया है वो मैंने खुद किया है। और इसमें अपने लिए सक्सेस फील करता है या फेलियर? ऑफ कोर्स सक्सेस। एक काम को ऐसा करना पड़ेगा इस जालिमों को कि एक सिस्टम होगा उनके लिए जिनको मारना है, वो तो चलो ठीक है अलहदा हो गया। एक सिस्टम उन लोगों के लिए होगा जिनको IMF वर्ल्ड बैंक भेजना है, चलो वो वहाँ पे हो गया। एक सिस्टम उनके लिए चाहिए जिनको कन्विंस करना है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, वो करते रहेंगे। इसकी को कैसे करते हैं? फिरौन ने ये अपनी कौम के साथ किया था, ये काम कैसे किया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के सामने पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ख़ुदा ने मुझे भेजा है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो फिरौन ने जब देखा कि मसलन मेरे पास एक चांस है, तो आए करीमा कहती हैं कि फिरौन ने ये कहा, ये बताओ कि मेरे पास तो मुल्क मिस्र है, तुम्हारे पास कौन सा मुल्क है? तजरिन अनहार ताहती, मेरे नीचे नहरें चल रही हैं, तुम्हारे पास क्या है? उस वेरा तुम मिन ज़हब, सोने का कोई ढेर लायो। चलो तुम कहते हो कुछ हो, फरिश्ते लायो अपने साथ, वो दिखाओ। ये चार चीज़ें फिरौन ने इन आयतों में क्लेम की हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। इसके बाद खुदावंद तआला फरमाता है फस्तखफ़ क़ौमहू फ़अताहू। इसका ये काम क्या काम है? ये काम है लोगों की वैल्यूज़ को चेंज करना अपनी मर्जी से, लोगों के सेट ऑफ वैल्यूज़ में उन चीज़ों को, क्रस यहाँ पर आ रहा है, उन चीज़ों को वैल्यू देना जो खुदा के निज़ाम में वैल्यू नहीं थी। खुदा के निज़ाम में नबी होने के लिए मुल्क चाहिए होता है? नहीं। खुदा के निज़ाम में नबी होने के लिए नहरें बह रही हैं उसके नीचे? नहीं। अच्छा, फिरौन को पता था मेरे पास हैं, तो उसने यूं शो किया कि स्टैंडर्ड यही है कि ये होना चाहिए। हु सेट दैट स्टैंडर्ड्स? फिरौन। क्यों? क्योंकि वो कहता था मैं रब हूं, मेरी मर्जी में जो बनाऊं। अब मैं एक बात पूछता हूं, जिसने उसके स्टैंडर्ड्स को मान लिया उसने क्या किया? एक्चुअली उसने फिरौन को रब मान लिया है। प्रॉब्लम यहाँ है, अब ये जो दूसरों को रब माने बैठे हैं कि उनके स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ये रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे को मानेंगे? 1100 साल तो गुजर रहे हैं तकरीबन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं और तुम दुआए हद पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ लेंगे चूँकि 4 मिनट का काम है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे दिमाग में सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये किसने फिट किए, क्या फिट हुआ हुआ है यहाँ पर? तफसीर खुम्बी में ये रिवायत मौजूद है कि फरमाया कि तुम और बनी इसराइल एक मुकद्दर से गुजरोगे, तुम लोगों की डेस्टिनी एक ही रहेगी। ताबखन नाल बिन नाल, घोड़े के पाँव के नीचे जो स्टील का फ्रेम लगा हुआ होता है उसको नाल कहते हैं। एक पाँव रखो, दूसरा पाँव दोबारा, ताबखन नाल बिन नाल। फरमाया तुम और बनी इसराइल ऐसे एक दूसरे के साथ चलोगे। तो पूछने वाले ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, यहूदियों और नसरानियों के साथ? तो फरमाया मैं और किसको कह रहा हूँ? तो सुनने वाला कह रहा, हम मुसलमान हैं, हम ताबकन नाल बिन नाल किसके साथ करेंगे? यहूदियों नसरानियों के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ यही कहा, यही कहा। ये क्या हुआ? फरमाया अगर वो किसी सुराख से भी गुजरे हैं ना, तुम भी गुजरोगे। अच्छा, सुराख का मतलब यहाँ क्या है? एग्जाम, टेस्ट, किसी टफ जगह से। अगर वो किसी टफ जगह से गुजरे तुम भी गुजरोगे। अब यहाँ पर एक मुश्किल है, बनी इसराइल, अमीर मोमिनीन ने नहजुल बलागा में भी फरमाया, मौलाना ने फरमाया कि बनी इसराइल वो कौम थी जो पानी से अभी निकले थे, और वो पानी मौजज़े वाला पानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुदा किया, वो निकले, अभी पानी से निकले थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग सोने के बुतों के सामने सर झुकाए बैठे हैं। تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دو. احمق ہو، ابھی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈنڈے کی طاقت دیکھ کے آئے ہو، ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ. یہ ڈنڈا ابھی بنی اسرائیل پہ اس پہ فرعونیوں پہ گھوما تھا، تو وہ کیا حشر کیا تھا. اچھا میں یہ تو میں نے کہہ دیا ایسے ہی. انہوں نے ان کے بتوں کو دیکھ کر یہ کہا کیوں؟ ان کے مائنڈ سیٹ میں سونا خدا ہے. فرعون نے یہی کہا تھا نا، تمہارے پاس سونے کا ڈھیر کہاں ہے؟ یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں گھسا ہوا ہے. اچھا یہ قوم فرعون ہے؟ نہیں، یہ قوم بنی اسرائیل ہے، لیکن مائنڈ سیٹ یہاں آ گیا ہے. فرعون نے ڈیمانڈ کیا تھا تمہارے پاس سونا کہاں ہے، اس کا مطلب ہے فرعون کے دماغ میں کیا تھا کہ جس کے پاس سونا ہوگا وہ خدا ہوگا. یہ قوم فرعون کی نہیں ہے، فرعون کی قوم غرق ہو چکی ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، اس کی مائنڈ سیٹ میں بھی سونا ہے. جب بتوں کو دیکھتے ہیں سونے کے ہیں تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی جنت سے بنا دو. کیوں؟ اندر سے ہم بھی سونے کے پجاری ہیں. سونے کا پجاری ہونا مشرک بناتا ہے. بدبختوں نے سامری کے مجسمے کے سامنے سر جھکا دیا، کیوں؟ وہ بھی سونے کا تھا. اس کا مطلب ہے ان کو سونے کی عبادت ختم نہیں ہوئی ان کی. ایک دفعہ ڈانٹ کھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کر رہے ہو نا یہ تباہی ہے. باطلون متبرون، یہ تو تباہی کی باتیں کر رہے ہو تم، یہ ڈانٹ پڑ چکی ہے قرآن کریم میں ہے. پھر جب سامری کے واقعے میں آئے پھر دوبارہ سونے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور اب ایسے بیٹھے کہ کہا جب تک موسیٰ نہیں آ رہے ہم تو اس کی عبادت کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا مائنڈ سیٹ سونے کی بندگی سے باہر نہیں آ رہا. اور سونے کی عبادت ان کو کس نے سکھائی تھی؟ فرعون نے. فرعون زندہ ہے مر چکا ہے؟ یا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ مرا ہوا فرعون بھی ان کے دماغ پہ ابھی بھی حکومت کر رہا ہے. اور اس طرح کالونیز بنانے والے کنٹریز دوسرے کنٹریز پہ حکومت کرتے رہتے ہیں، تو وہ ابھی بھی حکومت کر رہا تھا ان کے دماغ کے اوپر. اتنی حکومت کر رہا تھا کہ وہ مر گیا تھا اور ان کا نبی زندہ سامنے کھڑا تھا، لیکن نبی کی نہیں سنتے، ابھی بھی فرعون کی سنتے ہیں. اللہ اکبر. طابق النعل بالنعل کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی اپنے امام کے آنے کے بعد یہ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذہنوں میں جو سونے کی پجاریت ہوگی، بندگی ہوگی، وہ تم نہیں نکال پاؤ گے، تو تم یہ کرو گے.